बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तहज़न, सेशन नंबर 16। आज इंशाल्लाह रोल्स एंड गोल्स डिस्कस करना है आपके साथ कि हमारे जो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किरदार हम अदा करते हैं और हम उन किरदारों को कितनी अच्छी तरह अदा करें कि उनके जो मकासद हैं हम वो पूरे कर लें। इससे पहले हम बहुत डिटेल में प्रायोरिटी सेटिंग पे बात कर चुके हैं कि हम अपनी तरजीहात को कैसे डिटरमिन करें और अपनी तरजीहात को कैसे ठीक जगहों पे रखें, अपनी तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज़ को कितना वक्त हमने देना है और उसके मुताबिक हमने कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। बल्कि आज तो बहुत ही इनकरेजिंग फीडबैक मुझे मिला है अंदलीप की तरफ से, बहुत शुक्रिया। बहुत इनकरेजिंग बात है कि आपने इस्तेमाल किया और आपने अडॉप्ट किया उस टाइम टेबल को और आपने उसको यूज़फुल पाया। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सबक है जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। बाज़ लोगों ने मुझे कहा है कि हम तो ला तहज़न को बस हम तो इसको एक दरसो तदरीस का सेशन समझ रहे थे। बात ये है कि दरसो तदरीस तो तभी काम करता है, तभी इफ़ेक्टिव होता है जब उसको अप्लाई किया जाए। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इस सबक को अपनी लाइफ में, अपने रोज़मर्रा मामूल में अप्लाई करके देखें। तो हमारे जो ज़िंदगी में रोल्स हैं वो तो बहुत आसान हैं। मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि रिसर्च के मुताबिक 7 से ज़्यादा रोल्स नहीं लिखने चाहिए। जो मैं आज आपको अपनी डायरी की तस्वीरें भेज रही हूँ वो मैंने 7-8 बल्कि 9 रोल्स उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उसको खोल के लिखा है क्योंकि ये रिसर्च जो है मगरिब से आई है, वेस्ट से आई है। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और रोल्स एंड गोल्स जो हैं ये स्टीफन कवी, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के ऑथर हैं, ये मेथड उन्होंने निकाला था 70s में। और मैं आपको वसूख से कह सकती हूँ कि आज तक कोई इससे बेहतर मेथड नहीं निकाल सका। वो जो 70s में, तकरीबन आप समझें 50 साल पहले की बात है ये, कि स्टीफन कवी ने मैनेजमेंट वर्ल्ड को और फैमिलीज़ को ये बताया कि आप अपने रोल्स डिफ़ाइन करें और फिर उन रोल्स को आपने खोल के देखना है कि मैं हर रोल में मुझे रोज़ाना क्या करना है ताकि मैं एक कामयाब गोल की तरफ बढ़ सकूं और मैं अपने इस रोल में कामयाब हो सकूं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, हम ज़िंदगी में बास चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फिक्सेट हो जाते हैं, रोल फिक्सेशन कहते हैं इसको। कि जैसे हम अगर एक माँ हैं तो हम टोटली उस बच्चे को डेडिकेट हो जाते हैं। जब पहली दफ़ा पहला बच्चा जब पैदा होता है तो अक्सर ख़वातीन ने यह एक्सपीरियंस किया होगा, या जब हमें एक नई जॉब मिलती है तो हम टोटली उस चीज़ पर फिक्सेट हो जाते हैं, या जैसे हमें यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो हम बाकी सब चीज़ों को पीछे कर देते हैं। जैसे हमारे कमरे में अगर कोई आए तो हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं, क्या कर रही हो, मैं होमवर्क कर रही हूँ, उफ़ल्ला मेरा यूनिवर्सिटी का काम है, तुम्हें पता नहीं है ये कितना ज़रूरी काम है। या हमारा बच्चा जब सो रहा होता है तो हम सारे घर वालों का जीना अजीरन कर देते हैं कि बेचारे वो अपने पैर जो हैं उस कहते हैं कि हम अपने सर पे बांध के पैर चला करें क्योंकि इनका बच्चा सो रहा है, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो जो हमारी ज़िंदगी में कुछ रोल्स बहुत डोमिनेंट होते हैं, जैसे जब हम माँ बनते हैं या जब हम नए नए एक करियर में एंटर होते हैं या हम नए कोई जॉब लेते हैं या एक नई जगह पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन अगर हमारे रोल्स क्लियर होंगे, अगर हमारे रोल्स क्लियर हों, और हमारे रोल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि रोल डोमिनेंस जो है, जब एक रोल बाकी रोल्स को दबा देता है तो उससे रोल कन्फ्यूजन पैदा होती है। उसमें मसला ये होता है कि जैसे नया बेबी आया है तो आप उस बेबी को ही प्यारी हो गई हैं और आप बस उफ़ल्ला बेबी 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 कर करके, तो एक महीने बाद या दो महीने बाद आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि यार जब से ये बेबी आया है सीरियसली तुमने तो अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया है और तुमने तो मेरा ख्याल रखना ही छोड़ दिया है। तो एकदम से जैसे एक आपका वो जो सारा खुशी होती है और उस रोल में जो आप इंजॉय कर रही होती हैं सारा कुछ, उस बेबी को जो आप इंजॉय कर रही होती वो एकदम से सब कुछ शैटर हो जाता है, क्योंकि आप किसी और की आंखों से उस रोल को नहीं देख रही होती और आप कहती हैं अच्छा मैं तो बेबी के साथ सारी सारी रात जागी हुई होती हूँ और मैं तो इसकी इतनी खिदमत कर रही हूँ, इतना मोटा ताज़ा हो गया ये बेबी और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ख्याल नहीं रखती हूँ। वो एकदम से एक रोल कॉन्फ्लिक्ट और एक रोल कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। या जैसे जब आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो और आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बने और सारी सारी रात बैठ के आप पढ़ते रहें, तो एक दिन अगर आपका छोटा बहन भाई या आपका कोई फ्रेंड आपको ये कहे कि यार जब से तुम्हारा एडमिशन हुआ है सीरियसली तुम तो सबको भूल ही गई हो, तो वो एकदम से आपको एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर पैदा होता है। और इंसान जो है वो बाय नेचर बहुत नेगेटिव है। कुरान में ये है कि हमने इसको बड़ा थोड़ा दिला पैदा किया है, बड़े छोटे दिल का मालिक है, बड़ा जल्दी ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमारा वैसल ही इतना छोटा है कि अगर हम उसको एक रोल से भर लें तो फिर हम रोल कन्फ्यूजन में और रोल कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो जाते हैं। और फिर मसला उसमें जो सबसे ख़तरनाक मसला ये है कि जो हमने डोमिनेंट रोल बनाया होता है, जैसे अगर हम माँ हैं तो हमें वो बच्चा भी लिटरली बुरा लगना शुरू हो जाता है और हम ये कहते हैं क्या मुसीबत पैदा हो गई है, इसकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसे होता है, हम सब के साथ ऐसे हुआ है और ये ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी औरतें होती हैं जो शादी सिर्फ इस शर्त पे करती हैं कि जी आपने मेरे करियर में कभी भी नहीं इंटरफेयर करना। मैं भी उन्हीं औरतों में से हूँ, आई हैड अ वेरी एक्टिव करियर, आई एम अ डॉक्टर। तो ये बहुत बड़ी शर्त थी कि हमने तो शादी ही ऐसे मर्द से करनी है जो हमारे करियर को सपोर्ट करे। होता क्या है कि मर्द तो हमें वैसा मिल जाता है और वो अच्छे होते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत ज़िंदगी दे, खुश रखे, वो हमारे करियर को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम करियर में एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो कभी कभी हम अपने हस्बैंड से भी सीनियर हो जाते हैं, हम प्रोफेसर बन जाते हैं और हम डीन बन जाते हैं और हम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। और फिर जब हमारे हस्बैंड हमें ये कहते हैं कि मेरे पैर दबाओ और मुझे खाना बना के दो और तुमने तो घर को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है अपने इस करियर के लिए, तो उस वक्त फिर हम वो समझौता नहीं कर सकते। हमें ऐसे लगता है जैसे हमारी पूरी कायनात तबाह हो गई है, हमें ये लगता है कि ये मर्द तो हमें सपोर्ट ही नहीं करता, हालांकि उसने हमारे पूरे करियर को सपोर्ट किया होता है और हमने करियर की सपोर्ट ही उससे मांगी होती है। हमने कभी उससे इमोशनल सपोर्ट नहीं मांगी होती, हमने कभी उससे फिजिकल सपोर्ट नहीं मांगी होती। तो जब अगर उसको वो चीज़ें करनी ही नहीं आती तो फिर उसका तो कोई कसूर नहीं ना है, वो तो फिर हमारा अपना ही कसूर है, हमने जो चीज़ मांगी थी वो उसने हमें दे दी। तो इसलिए जितना अर्ली ऑन इन लाइफ जो बच्चियाँ ये सेशन सुन रही हैं, मेरी दुआ है कि वो ये आगे और बच्चियों को भी बताएं कि देखें ज़िंदगी के बिल्कुल शुरू में रोल्स एंड गोल्स बहुत डिफाइन होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में मेरे ये रोल हैं। और हर एक रोल जो है, इससे पहले याद है मैं आपको क्या फ़र्स्ट थिंग्स फर्स्ट में मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ, टू लिव, टू लव, टू लर्न एंड टू लीव अ लेगेसी, कि मैंने ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, अपने जिस्म का, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है, बीमारियों से बचना है, प्रिवेंशन करनी है। फिर टू लव है कि मैंने ये ज़िंदगी मोहब्बत से गुजारनी है, मैंने मोहब्बत के उसूलों पे अमल करना है, एक ऐसा इंसान बन के मैंने जीना है जो इस दुनिया में मोहब्बत से जिए, जो और क्रिएशन से मोहब्बत करे और खिदमत करे। फिर टू लर्न है कि मैंने सारी उम्र सीखना है, तालिब इल्म रहना है, हम कुरान सीख रहे हैं, हम ला तहज़न सीख रहे हैं, हम तालीम हासिल कर रहे हैं, हम सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हर किसी से सीखते रहना चाहिए। और फाइनली जो था टू लीव अ लेगेसी, यानी एक काबिल क़दर मीरास छोड़ के जाना। तो जब एक ज़िंदगी उसूलों के मुताबिक जी जाती है और एक ज़िंदगी में उसके रोल्स और गोल्स क्लियर होते हैं, तो वही ज़िंदगी फिर फाइनली ऐसी कामयाबी से हमकिनार होती है जिसमें कि इंसान दुनिया में अपना एक ऐसा नक्श छोड़ के जाता है जो रहती दुनिया तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और उसके तवस्सुत से उसे भी दुनिया छोड़ने के बाद भी फ़ायदा पहुंचता रहता है। तो रोल्स एंड गोल्स शुरू करते हुए मैं आपको जो इमेजेस भेज रही हूँ, बेसिकली आज का सारा काम जो है वो इमेजेस का है, आपने इमेजेस को देखना है और वैसी अपने टाइम टेबल्स और अपने लिए ख़ुद से प्रोटोकॉल्स बनानी है। तो जो पहली इमेज मैं आपको भेज रही हूँ रोल्स एंड गोल्स, मैं नंबर कर देती हूँ इमेजेस को, जो नंबर 1 है, ठीक है। आई थिंक ये इस तरह इसी सीरीज़ में आपके पास आएंगी, लेकिन मैं इन पे नंबर लिख भी देती हूँ, 1, 2, 3 आई थिंक 4 भी है उसमें, एक इमेज है, लेकिन 1, 2, 3, 4 करके मैंने लिख दिया है आपके लिए, और ये इमेजेस आपको आ जाएंगी। तो उसके मुताबिक आपने अपनी प्रोटोकॉल्स बनानी है। जो पहला है वो है रोल्स डिफ़ाइन कर लें। तो मैंने अपने लिए जो रोल डिफ़ाइन किए हैं वो आपके सामने हैं तस्वीर में, कि मैं सबसे पहले तो मेरा ईमान है, मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने एक मोमिना की हैसियत से जीना है। उसके बाद मेरे ख्याल में जो मेरी ज़िंदगी में डोमिनेंट रोल है वो है मैं एक माँ हूँ, और बच्चे मेरी ज़िंदगी का फोकस हैं, मेरा सब कुछ इन बच्चों के लिए है। अगर मैं खुश होती हूँ तो इनके लिए होती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कभी मैं डिप्रेस हूँ या उदास होती हूँ तो यही मेरी वो चीज़ वो उदासी कम करते हैं, और मेरी परेशानियाँ भी ज़्यादातर बेशतर परेशानियाँ जो हैं वो इन बच्चों से जुड़ी हुई हैं, और मैं दुआएँ भी बहुत ज़्यादा इन बच्चों के लिए करती हूँ। उसके बाद जाहिर है बच्चे जो हैं वो मेरे सिर्फ अकेले नहीं हैं, बच्चों का एक बाप भी है, तो उनके लिए यानी उनकी बीवी हूँ मैं, मेरा वाइफ का एक रोल है, फिर मैं बेटी हूँ अपने वालदैन की, और वो एक बहुत मेजर रोल है मेरी ज़िंदगी में, फिर जिनकी बेटी हूँ उनके तवस्सुत से मुझे बहन भाई मिले हैं, सिबलिंग्स मिले हैं, तो मैं एक बहन हूँ और मेरा वो एक अलग रोल है, मैं बड़ी बहन हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। उसके बाद मेरा प्रोफेशनल रोल है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं मसीहाई करती हूँ, बच्चों की डॉक्टर हूँ मैं, तो ये, और डॉक्टर का रोल जो है ये सिर्फ करियर तक फिर लिमिटेड नहीं है, वो आपके सारे रोल्स को अफेक्ट करता है। मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, आप ये समझें कि बच्चों की डॉक्टर होते हुए भी मैं फिजिशियन भी हूँ, एक बड़े निचले दर्जे का छोटा सा सर्जन भी हूँ मैं गायनाकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, यानी मैं लोगों के बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मेडिकल नॉलेज की बेसिस पे मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, और अल्लाह कबूल करे वो कोशिश। फिर उसके बाद ये है कि मैं एक मेडिकल की उस्ताद हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, पीट्स यानी बच्चों का मेडिकल पढ़ाती रही हूँ, रिसर्च पढ़ाती रही हूँ, तो मैं एक उस्ताद हूँ, और वो उस्ताद होने की वजह से ही शायद ये जो सारी मोटिवेशन है और ये मेरे अंदर जो एक वो है कि मैं लोगों को पढ़ाऊँ, लोगों को सिखाऊँ, अब वो वहीं से आया है। तो मैं सिर्फ एक अब मेडिकल या एक करियर टीचर मैं नहीं रही हूँ, अब मैं एक जनरल टीचर हूँ, जो मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मुझे आता है वो मैं इम्पार्ट करूँ और लोगों को सिखाऊँ। उसके बाद फिर ये है कि मैं, ये मेरे ऐसे रोल हैं जो तकरीबन हर रोज़ मैं ये रोल्स प्ले कर रही होती हूँ, और मैं हर रोज़ ये काम कर रही होती हूँ। फिर ये है कि मैं रिश्तेदार हूँ, मैं लोगों की रिश्तेदार हूँ, बहुत से मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, अल्लाह उन सबको लंबी ज़िंदगियाँ दे और सेहतमंद और ईमान के साथ उन्हें सलामत रखे, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं मेरे, और उनके साथ फिर मेरे अपने अलग रोल्स हैं, किसी की मैं बहू हूँ, किसी की मैं भाभी हूँ, किसी की मैं कज़न हूँ, किसी की खाला हूँ, किसी की फूफी हूँ, तो उसमें भी बहुत से मेरे कनेक्शंस हैं जिन्हें मुझे खुशी के साथ मेंटेन रखना है। और फाइनली फिर ये है कि मैं दोस्त हूँ, और वो बहुत ही प्यारा एक रोल है मेरे ख्याल में। ये सारे रोल्स में जो मेरी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं और जो रोल कन्फ्यूजन और रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो वो मैं दोस्तों के साथ बड़ी खुशी से निकालती हूँ। जैसे आप लोग मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं सारे, आप लोग हैं, आपके अलावा फिर कुरान ग्रुप में हैं, हया अल फलाह में हैं, हिट फिट मोमिनात में हैं, फिर मेरे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं जो बहुत ही मेरी प्यारी स्टूडेंट्स हैं, जो अक्सर सवाल पूछ के मुझे किसी बड़े मुश्किल मसले के जवाब एक्चुअली दे देती हैं। तो ये मेरे सब दोस्त हैं, और मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मेरे प्रोफेशन के दोस्त हैं, मेरे वैसे ही दोस्त हैं जो आते जाते चलते फिरते कहीं मेरे दोस्त बन गए। तो वो दोस्त जो हैं वो भी, उनके साथ मेरा एक अपना रोल है और मुझे उनके साथ शेयर करना होता है, और उनके साथ वो दोस्ती मुझे मेंटेन रखनी है। तो ये सारे रोल्स जो हैं ये लिख कर आपने फैसला करना है कि जी मैं तो हर रोज़ ये रोल मैंने प्ले करना है, या इस रोल में मैंने हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये मेंटेन रहेगा। मतलब शायद मेरे रिश्तेदार मुल्क से बाहर रहते हों, जिनको मैं एक कॉल करूं और वो रिश्ता उनसे मेंटेन रखूं, या कभी कभी जैसे अगर मैं बाहर के मुल्क जाऊं या मैं बाहर के मुल्क से आ रही हूं तो मैं उनसे पूछ लूं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, अगर मेरी हैसियत है और मैं मेरे पास जगह हो तो मैं आपके लिए वो चीज़ ले आती हूँ। तो एक कुर्बत का ताल्लुक जो है मैं उनके साथ मेंटेन रख सकती हूँ, अगर मैं उनको हफ्ते में 2 हफ्ते बाद भी अगर उन्हें एक कॉल कर लूँ। फिर जो मेरे दोस्त हैं वो तो मेरे दोस्त हैं, उनसे तो मैं रोज़ाना भी बातें कर सकती हूँ, महीने में एक दफ़ा भी बात कर सकती हूँ, साल में एक दफ़ा भी कर सकती हूँ, कभी कभी फेसबुक पे भी करती हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त वहीं पे हैं और मैं ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अपने उस रोल में करती हूँ। अच्छा, जब रोल्स एंड गोल्स लिख लिए जाते हैं, जब आपने रोल सारे लिख लिए, तो अब आपने हर एक के लिए एक गोल लिखना है। आपको मैंने कल कहा था कि प्लीज़ आप बग़ैर सोचे, यानी कि मेरा ये लेक्चर सुने बग़ैर कोशिश करें कि आप वो गोल्स लिखें। रोल्स तो लिख लें, अब आप ये करें कि आप हर एक के लिए एक गोल लिखें। जैसे मैं माँ हूँ तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे खुशबाश हों, सेहतमंद हों, अच्छे मोमिन मुसलमान हों, लोगों की मदद करने वाले हों, अच्छे इंसान हों, और वो तालीम में भी कामयाब हों और वो स्पोर्ट्स में भी कामयाब हों, जो भी जैसे माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं। फिर जैसे अगर मैं एक बीवी हूँ तो मुझे क्या करना है कि मैं अपनी ये मैरिटल रिलेशनशिप स्टेबल रखूँ, अपने घर का ख्याल रखूँ, अपने घर को मैं एक पुरसकून जगह बनाऊँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सुकून फील करें, ये नहीं कि वो शाम को वहाँ से भागने की करें कि ये क्या मुसीबत है और फिर सर झाड़ मुँह फाड़ शक्ल मुझे मेरे सामने आ गई है। फिर अगर मैं बेटी हूँ तो मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, उनकी मटीरियल ज़रूरियात जो हैं, जैसे जो लिव वाले सेक्शन में आती हैं, अगर वो बीमार हैं खुदा ना खास्ता, तो मैं उनकी खिदमत करूं, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं उन्हें मेडिकल मशवरे दूं और ओल्ड एज की बीमारियों से उनको मैं जिस हद तक बचा सकती हूं, जितनी प्रिवेंटिव मेजर्स मैं उनको बता सकती हूं मैं बताऊं। फिर बहन होने के नाते, और वो भी बड़ी बहन, मुझे अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना है। अक्सर मुझे ऐसी कड़वी कसैली सुननी पड़ती हैं। जाहिर है हर एक बहन भाई माशाल्लाह अपने अपने घर में है, अपने बच्चों के माँ बाप हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप तो खामखाई बस बड़ी बड़ी बातें करती रहती हैं, मतलब उनको, क्योंकि उनका तजुर्बा नहीं है तो रिजिस्ट करते हैं उस सजेशन को। वो भी फिर आपको, यानी कि वो कड़वा घूंट पीना पड़ता है, और ठीक है अगर वो आपकी बात नहीं भी मान रहे, लेकिन आप उनके अच्छे के लिए और उनकी भलाई के लिए वो बात बार बार करें और कोशिश करें कि वो बात उनको समझ में आ जाए। उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने भांजे भतीजियों का, अपनी भांजियों का, सबका, यानी आपको ध्यान रखना होता है। एक चीज़ जिसमें मैं बहुत ही नालायक हूँ वो ये कि मुझे बर्थडेज कभी भी याद नहीं होती हैं, लेकिन वो इधर उधर से, शुक्र है आजकल व्हाट्सएप का भला हो और फेसबुक का भला हो, पता चल जाता है, तो मैं उनको विश लिखती हूँ। अगर उनकी तालीम में उनका कोई मदद करनी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। अगर उनको तोहफे तहाइफ देने का हो, अगर कहीं और जो भी सपोर्ट यानी कि मैं कर सकती हूँ, तो एक खाला या पुपी की हैसियत से मैं करती हूँ। फिर ये सारे जो रोल्स हैं, मैं आपको एक सैम्पल रोल भेजूंगी कि रोल्स और गोल्स, उसके सामने गोल जब आप लिख चुकेंगे ना, गोल एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे एक मोमिन के लिए गोल क्या है, जैसे मैं मोमिना हूँ, आप सब मोमिनात हैं माशाल्लाह, तो हमारा गोल क्या है, हमारा एम इन लाइफ क्या है, ये ही है ना कि हम जन्नत में चले जाएं, तो जन्नत तो बहुत बड़ा गोल है, वो तो बड़ा गोल मोल सा एक गोल है, लिटरली गोल है कि हमें, यानी जन्नत में तो फिर बहुत ज़्यादा बातें हैं कि आखिर जन्नत पहुंचना है तो क्या करना है। आप सिर्फ इस पे ही सोचना शुरू कर दें तो शायद आपका सारा दिन उसमें लग जाए। हुकूक और फ़राइज़ की अदायगी है, कुरान पढ़ना है, सुन्नत सीखनी है, औरों को पढ़ाना है, ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, सारा वक्त सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, गुनाह कबीरा से बचना है और सगीरा गुनाहों से बचने की गुनाह दुआ करनी है, और लोगों की के लिए भला सोचना है और बदगुमानी नहीं करनी है। यानी कि वो प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट की पूरी सीरीज़ आप सोचें कि हसद नहीं करना और बुग़्ज़ नहीं रखना और फजूल बातें नहीं सोचनी, लगवियात से एराज करना है। बहुत लंबी लिस्ट है जो जन्नत जाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो ये तो, यानी आप बैठ के सोचना शुरू करें तो बस आप सोचते ही चले जाएंगे, रोल और गोल तो आपको भूल जाएगा, आप ये फिक्र में पड़ जाएंगे कि आखिर ये होगा कैसे। तो रोल्स एंड गोल्स की ब्यूटी ये है कि आप अपने गोल को डिवाइड कर लें, अपने गोल को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, और आप आखिर में ये कहें, यानी एक गोल है जैसे जन्नत, तो आप जन्नत के बजाय ये सोचें कि जी मैं आज कौन सा अमल करूं जो मुझे जन्नत से थोड़ा करीब ले जाएगा। आज करूं, फिर कल करूं, फिर परसों करूं, फिर करती जाऊं, करती जाऊं, करती जाऊं, यहां तक कि मैं वो अमल कर करके मैं इतनी सारी नेकियां जमा कर लूं और इतने सारे अच्छे काम कर लूं और इतने सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा जाऊं कि बस मैं किसी तरह जन्नत के लिए क्वालिफाई कर जाऊं, और जन्नत भी यानी कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। तो ये अपने रोल्स एंड गोल्स की ये ब्यूटी है कि जो आपका वो बड़ा गोल होता है ना, उसको आप छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये स्ट्रेटेजिक विजन्स की एक वर्कशॉप है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे आधे घंटे में उसको कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेटेजिक विजन जो हैं एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं वो पढ़ाते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जैसे वो पढ़ाते हैं मैंने नहीं पढ़ी कहीं, ये स्टीफन कवी वाली टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट के साथ रिलेटेड है। स्ट्रेटेजिक विजन्स जो है ये हमारी अपनी होम ग्रोन बात है, पाकिस्तानी है, वो मुसलमान हैं, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और वो ज़बरदस्त टाइम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक गोल बना लेते हैं, गोल ख़ुद से बनाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जब गोल बन जाता है तो फिर उस गोल को आप एक दिन में तो नहीं ना हासिल कर सकते, वो तो सारी ज़िंदगी का काम होता है। तो फिर आपने ये फ़ैसला करना है कि मैं आज क्या करूं कि मैं अपने इस गोल से थोड़ा करीब हो जाऊं। और जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे इतने गोल हैं, यानी ये 7-8 काफ़ी बड़े बड़े गोल लिखे हैं आपने, तो जब आप उन सब गोल्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपको अपना हर रोज़ का टाइम टेबल साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर आपको कोई रोल कन्फ्यूजन नहीं होती, फिर आपको कोई रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आपको ये पता होता है कि जी मैंने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उसके साथ ही मैंने अपने घर को भी एक खुशगवार और अच्छी जगह बनाना है, और उसके साथ ही मैंने अपने माँ बाप को भी खुश रखना है और उनका ध्यान रखना है, और उसके साथ ही मैंने अपने बहन भाइयों का भी ध्यान रखना है, और इन सब बातों के साथ जो है तो मैंने अपने प्रोफेशन पर भी ध्यान देना है। तो आपको वो सारे छोटे 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 खाने नज़र आने शुरू हो जाते हैं जिसमें आपने अपने काम लिखने हैं, सिर्फ एक दिन के या एक हफ्ते के या एक महीने के, और जब आप वो सारे काम उसमें लिख लेते हैं तो गोया आप अपने गोल की तरफ गामजन हो चुके होते हैं, आप एक ठीक रास्ते पे चल चुके होते हैं। क्योंकि देखें सूरह फातिहा में भी ना, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अहदिना सिरातल मुस्तकीम, हर रोज़ नमाज में कहते थे, कितनी मरतबा कहते थे, तो अहदिना सिरातल मुस्तकीम जब एक पैगंबर कह रहा है अहदिना, हिदायत दे दे हमें अस्वरात, उस रास्ते की, अलमुस्तकीम जो सीधा है, हैं जी, तो एक पैगंबर ये कह रहा है, और वो पैगंबर जो फरिश्तों को देखता है और जिस पे वही नाजिल हो रही है, तो मतलब एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने ये पूछा कि आखिर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर नमाज में ये दुआ करने की क्या ज़रूरत थी। तो दरअसल ये जो है, ये दुआ जो है, इसके दो मकासद हैं। एक तो ये है कि हमें रोज़ाना हिदायत चाहिए होती है, रोज़ाना नहीं बल्कि आप समझें कि हम हर नमाज में, हर सांस के साथ, हर स्टेप पे, हर थोड़ी देर के बाद हम वो हिदायत मांग रहे हैं, क्योंकि वो हिदायत खो जाना बहुत आसान है। हमारी जो दुनियावी काम हैं और दुनिया लगवियात और फजूलियात और ये 6-6 घंटे की और 8-8 घंटे की जो हम मेहंदियाँ अटेंड करते हैं और शादियाँ अटेंड करते हैं और अल्लम गल्लम चीज़ें वहाँ पर खा के वापस आते हैं कि 2 दिन फिर हमारी तबीयत ख़राब रहती है, वो इसलिए कि हमारी तरजीहात ठीक नहीं है, हमने अपने रोल्स नहीं डिफ़ाइन किए हुए, हमने अपने गोल्स नहीं डिफ़ाइन किए हुए, और चूंकि ये डिफ़ाइन नहीं है तो हम हर जगह पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर हमें ये पता हो, जैसे अगर मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है और मुझे ये पता है कि जी मैं मोमिना भी हूँ और मैं बच्चों की माँ हूँ, मैंने उनका ध्यान रखना है, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक भी है, और मेरे हस्बैंड का भी मैंने ध्यान रखना है, और मेरे इतने सारे काम हैं, तो यकीन करें कि एक शादी का फंक्शन और ये जो आजकल के बेहंगम फंक्शन होते हैं, उन फंक्शंस में 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। आप मुझे 1 से 2 घंटे निकाल के दिखा दें एक टाइम टेबल में और कहें कि जी ये मैं उस शादी में लगा के आऊँगी ये टाइम। अगर हमें अपने रोल्स एंड गोल्स मालूम हो और अगर हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो और अगर हम अहदिना सिरातल मुस्तकीम मांग रहे हों और अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की हुई हो, तो फिर हमारे पास फजूलियात के लिए कोई वक्त नहीं रह जाता। दूसरा मकसद इस दुआ का क्या है कि ए अल्लाह हमें वो रास्ते की हिदायत दे दे जो सीधा है और फिर उस पर हमें इस्तिकामत दे दे। استقامت بہت ضروری ہے. ہم لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. ایک دن خوش رہتے ہیں, دو دن بڑا ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرتے ہیں, تیسرے دن 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں, یا ہر ٹائم ٹیبل کر کر کے دماغ خراب ہو گیا ہے. اب آج آرام کا دن ہے, ٹوڈے از مائی ریسٹ ڈے. ہیں جی, ہم کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ہر وہ عمل پسند ہے جو متواتر کیا جائے, خواہ جتنا بھی تھوڑا کیا جائے. تھوڑا کریں خیر ہے, لیکن متواتر کریں, عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح یہی ایکسرسائز کے بارے میں بھی سچ ہے, یہ ڈائٹ کے بارے میں بھی سچ ہے. اگر چھوڑ دیا تو فائدہ نہیں ہوگا, پھر آپ ڈائٹ کو بھی روتے رہیں, گالیاں دیتے رہیں, پھر آپ کہیں کہ میں نے ایکسرسائز کیوں کی, میں تو اور ہی پھیل گئی ہوں. اور آپ اس لیے نہیں پھیلی ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہے, اور آپ اس لیے پھیلی ہیں اور آپ اس لیے نہیں پھیلی ہیں کہ آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں. پھیلی آپ اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہے. تو کنسسٹنٹ رہنا, اسٹیڈفاسٹنس, استقامت, یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میری پرائیورٹیز ٹھیک رکھ, میری ہدایت جو ہے, میری ترجیحات کے لیے مجھے ہدایت بالکل ٹھیک دے دے, اور پھر اس کے اوپر مجھے استقامت عطا کر دے کہ میں ان سب ذمہ داریوں سے ایسے ہی عہدہ برا ہوں جیسے تو چاہتا ہے, جیسے تو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب آپ اپنے گولز لکھ لیں گے تو وہ آپ کو بڑے بڑے, بلکہ بہت بڑی بڑی چٹانیں نظر آنی شروع ہو جائیں گے. او مائی گاڈ, یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کو خوش رکھیں اور بچوں کو کامیاب بنائیں, ایکسکیوز می, یہ مطلب یہ بہت بڑے بڑے بینرز ہیں. دیز آر ناٹ تھنگس ٹو ڈو, یہ نعرے ہیں, جیسے یہ سلوگنز ہیں, موٹوز ہیں, جیسے پارٹیوں کے ہوتے ہیں. تو یہ سلوگنز اور موٹوز جو ہیں یہ آپ نے حاصل تو کرنے ہیں, لیکن یہ آپ نے اپنی روزانہ کی محنت سے حاصل کرنے ہیں. ایک دن میں آپ نے مے بی 1/1000 ایک کام کرنا ہے, پھر 1000 دن تک وہ کام کرتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اپنا گول مل جائے گا. اگر آپ کنسسٹنٹلی اور استقامت کے ساتھ اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ اپنا وہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ گول یقیناً ملے گا. یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے, اور یہ جو اسٹریٹیجک مینجمنٹ کے گرو ہیں سارے, اور جو آپ کے ٹائم مینجمنٹ کے گرو ہیں, اور جو آپ کے فرسٹ تھنگس فرسٹ کے گرو ہیں, یہ ان سب کے وعدے ہیں, اور انہوں نے یہ ریسرچ سے ثابت کیا. ہزاروں لوگوں پہ سرچیں کی ہیں انہوں نے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ڈیلی آبجیکٹیوز آپ نے اپنے لکھنے ہیں. گول تو آپ نے لکھ لیا ہے, پھر آپ نے ڈیلی آبجیکٹیو کہ میں روزانہ کیا کروں گی کہ مجھے یہ گول مل جائے. ٹھیک ہے, اچھا آخری بات گول کے بارے میں, جب آپ ایک گول لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ فرسٹ تھنگس فرسٹ کی 4 باتیں یاد رکھنی ہیں. وہ میں نے آپ کو, جیسے اولاد کی فلاح ایک بڑا پاپولر گول ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں نے اس کی ایک مثال بنا کے آپ کو بھیجی ہے کہ ٹو لیو یعنی زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے, ٹو لو محبت کے ساتھ زندگی گزارنا, پھر ٹو لرن علم حاصل کرنا, اور لیو اے لیگیسی یعنی ایک قابل قدر میراث چھوڑنا. یہ 4 جو فرسٹ تھنگس فرسٹ کے جو 4 اینگلز ہیں, اس سے میں نے آپ کو یہ جو گول ہے کہ میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, میں نے وہ گول توڑ کے آپ کے سامنے وہاں پہ لکھا ہے. اور جب یہ توڑ کے یہاں پہ لکھا جاتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں ڈالتے ہیں. تو امید ہے, ذرا کمپلیکیٹڈ باتیں تھیں آج, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھیں, لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, اور آپ انشاءاللہ آگے بھی شیئر کریں گے اور ڈسکس کریں گے. پلیز اگر کوئی سوال ہو تو مجھے لکھ کے بھیجیں. میں چاہتی ہوں کہ آج کل میں آپ یہ رولز اینڈ گولز کی پوری ایکسرسائز کر لیں, اور آپ یو نو یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. کل کا سیشن بھی رولز اینڈ گولز کے بارے میں ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے سوالوں کے بارے میں ہو سکتا ہے میں اور اس کو آپ کے لیے آسان کر دوں, لیکن کل کا سیشن بھی اس کو دیا جائے گا. کیونکہ جب تک انسان کو اپنے رولز اینڈ گولز نہیں پتہ ہوتے, وہ ایک حشاش پشاش اور خوش زندگی نہیں گزار سکتا. وہ اس کی زندگی ہمیشہ رول کنفیوژن اور رول کانفلکٹ میں اور ترجیحات کی کمی کا شکار رہے گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ایکسرسائز ہے. انشاءاللہ یہ لا تحزن کا ایک میجر حصہ ہے کہ انسان کو, ہم سب کو اپنے رولز بھی پتہ ہوں اور اس کے مطابق ہمیں اپنے گولز بھی پتہ ہوں. کل ملنے کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.